किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज सुनिए फानी जोधपुरी जी द्वारा लिखी कहानी मेरा चांद। वाचन है निधि बासु का। थिएटर के लाउंज में पहुंचते ही सिद्धार्थ की नजर उस पे जा टिकी। वो उम्र के उस पड़ाव पर थी जिसे बजाहिर जवान तो कहा जा सकता है, मगर जवानों वाली नादानियां और गर्मजोशी, खिलंदड़ापन, लापरवाही सब मना थे। डार्क ब्राउन बालों और कत्थई आंखों वाली उस लड़की में न जाने कैसी कशिश थी कि सिद्धार्थ अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। वो लॉन्ग स्कर्ट और टॉप में थी जिसके कलर्स ब्राइट तो बिल्कुल नहीं थे, मगर उस सोबर कलर के आउटफिट में पक्की उम्र की उस लड़की ने सिद्धार्थ के दिल में हलचल मचा दी। हालांकि सिद्धार्थ कोई छिछोरा लड़का नहीं था, वो भी 40 साल का हो चुका, कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता था। शक्लो सूरत से शोक होते हुए भी उसने एक अजीब सी संजीदगी ओढ़ रखी थी। उसकी इसी संजीदगी की वजह से कई लड़कियों ने उसके दिल की शहरपनाह पर कमंदे डालने की बहुत कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने शायद दिल के शहर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा था। नरम दिल और तबीयत का होते हुए भी उसने एक फर्जी सख्ती अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी। शायद अपने ओहदे पर ईमानदारी से काम करने या फिर अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। सिद्धार्थ बचपन से ही पढ़ने में तेज था। माँ बाप की सबसे छोटी संतान होने के कारण उसे माँ बाप और अपने से बड़ी दोनों बहनों का भरपूर प्यार भी मिला, मगर ग्रेजुएशन के बाद ही पापा के ब्रेन हैमरेज ने उसके विदेश में पढ़ाने जैसे तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। कोचिंग में पढ़ाने से उसने जिंदगी की पथरीली डगर पर चलने की शुरुआत की और अपनी मंजिल कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचा, मगर सफर की शुरुआत और मंजिल तक पहुंचने की कीमत उसे उम्र के सिक्कों की शक्ल में देनी पड़ी। यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी दोनों बहनें अपने घर की हो चुकी थीं, उसका छोटा सा मकान अब डबल स्टोरी हो चुका था, घर के बाहर खड़ा रहने वाला स्कूटर कार में बदल चुका था। देखने वालों की नजर में सिद्धार्थ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मगर हकीकत में जिंदगी के सफर के ये फीके रंग उसके दिल में ऊब पैदा कर रहे थे। मम्मी अब भी उसके लिए लड़की देख रही थी, मगर उसको कोई जचती ही ना थी, क्योंकि अपने तजुर्बे से सिद्धार्थ इंसानों को पहचानने में माहिर हो गया था। हालांकि ये हुनर बंदे को धोखा खाने से तो बचाता है, मगर जब आप लोगों के दिलों के हाल और मंशा समझने का हुनर जान लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को खो भी देते हैं। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही था। वो अपने लिए आते रिश्तों में लोगों की मंशा समझने लगा था कि वो यही चाहते हैं कि अकेला लड़का है, अच्छी पोजीशन पर है, बेटी राज करेगी, मगर सिद्धार्थ की नजर कुछ और ढूंढ रही थी। लोगों में छिपी खुदगर्जी को भांप कर वो कई चेहरों को दूर कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि अब उसके पास बहुत सा खाली समय था जिसे उसने खुद में छिपे शौक से भर लिया। कॉलेज के बाद उसका इंटरेस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, कवि सम्मेलन, मुशायरे, नाटक वगैरह में बढ़ गया। बड़े शहर में रहने का ये फायदा भी था कि तकरीबन हर रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम होता था जहां उसकी मौजूदगी रहती थी। आज हालांकि उसकी तबीयत कुछ ढीली थी और उसका मूड घर पर ही आराम करने का था, मगर गोपाल जी के फोन ने उसके अंदर जोश भर दिया। गोपाल जी थिएटर की दुनिया का वो बड़ा नाम थे जो वाकई थिएटर के लिए जीते थे। कई बड़े इनाम पाने और कई किताबों को लिखने के बाद उनका कद बहुत बड़ा हो गया था। वे 65 साल के होने के बाद भी सिद्धार्थ से दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। सिद्धार्थ उनसे मिलने होटल पहुंचा तो काफी देर गपशप के बाद गोपाल जी उसे अपने साथ थिएटर ले ही आए, जहां उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और वहीं सिद्धार्थ की नजर पड़ी उस पर, जिसने सिद्धार्थ जैसे ठहरे पानी में हलचल मचा दी थी। 34-35 साल की वो लड़की सिद्धार्थ की नजरों को कहीं और ठहरने ही नहीं दे रही थी। सिद्धार्थ का दिल ऊपर वाले से यही मना रहा था कि काश उसको सीट उस लड़की के पास मिले। अचानक उस लड़की को अपने पास आता देख सिद्धार्थ चौंक गया, मगर वो लड़की सिद्धार्थ के पास खड़े गोपाल जी के पास आकर हाथ जोड़कर नमस्ते करके अपनी लिखी किताब गोपाल जी को सौंपते हुए सिद्धार्थ को अपना मोबाइल देते हुए बोली, मेरी और गोपाल जी की इस किताब के साथ एक पिक ले लेंगे प्लीज? श्योर श्योर, सिद्धार्थ ने हकलाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने एक नहीं 4-5 फोटो खींचे और मोबाइल उसे वापस देते हुए कहा, देख लीजिए, अगर अच्छी ना आई हो तो और पिक्स ले लूं। नहीं नहीं, सारी पिक्स शानदार ली हैं आपने, थैंक यू। अरे शाइना, तुम इनको जानती हो? गोपाल जी ने पूछा तो सिद्धार्थ को पता चला कि उसका नाम शाइना है। अरे ये रीगल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, सिद्धार्थ नाम है इनका, और सिद्धार्थ ये हैं शाइना, बहुत अच्छी शायरा हैं, इनकी शायरी बहुत फेमस है। जी हाँ गोपाल जी, मुझे याद आया, हम लोग सोशल साइट्स पर फ्रेंड्स हैं, मगर मुलाकात आज हुई, सिद्धार्थ बोला। ओह, हमने तो आपका पेज भी फॉलो किया है, आपके लेक्चर्स बहुत पसंद आते हैं सिद्धार्थ साहब। थैंक यू। नाटक शुरू हो गया था। चीफ गेस्ट के नाते गोपाल जी को सबसे आगे वाली कतार में बैठना पड़ा, मगर शाइना और सिद्धार्थ साथ साथ बैठे थे। सिद्धार्थ की मांगी दुआ कबूल हो गई थी। वो पास बैठी शाइना के वजूद से उठती माइल्ड परफ्यूम की खुशबू, जो उसके जिस्म की महक से मिलकर एक नई खुशबू बना रही थी, सिद्धार्थ के अंदर उतरती हुई उसके वजूद पे छा रही थी। इंटरवल में सिद्धार्थ ने बाहर उसे चॉकलेट ऑफर की तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया, 35 की उम्र है, अब चॉकलेट्स खाना बंद कर चुकी हूं। फिर दोनों कॉफी पीकर अंदर आ गए। नाटक खत्म होने पर सिद्धार्थ वापस गोपाल जी के साथ था और शाइना भी। सिद्धार्थ के जोर देने पर गोपाल जी उसके साथ डिनर के लिए राजी हो गए। फिर उसने शाइना से जब डिनर के लिए कहा तो शाइना ने उसे टालने की कोशिश की, मगर गोपाल जी के कहने पर राजी हो गई। तय हुआ कि भोजनम में डिनर किया जाएगा। शाइना, तुम अपनी गाड़ी से चलोगी क्या? सर, मेरी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी तो आज मैं कैब से आई थी, शाइना ने जवाब दिया। कोई बात नहीं शाइना, हम सिद्धार्थ की कार से ही चलेंगे। रात को सामने से आती रोशनी से गोपाल जी को प्रॉब्लम थी, इसलिए वो पिछली सीट पर और शाइना सिद्धार्थ के साथ ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। मेरे दिल की अब है दुआ यही कि ये रात खत्म ना हो कभी। कार में किसी शायर की ये गजल चल रही थी, जिसके हर लफ्ज पर सिद्धार्थ का दिल यही कह रहा था कि काश ऐसा ही हो। डिनर करते वक्त गोपाल जी अपने थिएटर के किस्से सुना रहे थे, जिनको सिद्धार्थ सुन तो रहा था, मगर उसका दिल कहीं और ही अटका हुआ था। सलाद की प्लेट उठाते वक्त सिद्धार्थ ने शाइना से पूछ लिया, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जिसका जवाब शाइना ने खिलखिलाते हुए एक शेर से दिया। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद, खूबसूरत लड़कियों के हाथ पीले हो गए, खूबसूरत लड़कियां बस हाथ मलती रह गईं।
अरे मगर तुम तो खासी खूबसूरत हो, गोपाल जी बोले।
सिद्धार्थ, ये भी तुम्हारी तरह सिंगल है अभी।
जी अच्छा, कहते हुए सिद्धार्थ की आंखें चमक उठी। आप कहीं जॉब करती हैं?
जी, मैं रेडियो मिस्ट में कॉपीराइटर हूं। काम के वक्त एड लिखती हूं और काम के बाद शायरी। अभी 2 महीने पहले ही जयपुर से आपके शहर आई हूं।
फिर तो मैं आपकी शायरी जरूर पढ़ना चाहूंगा। और हाँ, आप मेरे शहर में हैं, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा जरूर।
सॉरी, फिलहाल तो मैं अपनी एक किताब ही लाई थी जो गोपाल सर को दे दी। अगली मुलाकात पर आपको जरूर अपनी किताब दूंगी, मगर आप अपना नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके कॉलेज के साथ एक इवेंट करना चाहती है, तो उस मौके पर आपकी मदद ली जा सके।
फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और सिद्धार्थ ने पहले गोपाल जी को फिर शाइना को ड्रॉप किया। सिद्धार्थ बिना कपड़े बदले लाइट ऑफ करके औंधा लेट गया। उसके जहन में सिर्फ शाइना ही थी। सुबह वो कॉलेज गया, मगर दिल नहीं लग रहा था। उसे इंतजार था कि शायद शाइना का मैसेज आए, मगर नहीं आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहां तक कि पूरा हफ्ता निकल गया, मगर शाइना का ना तो कोई मैसेज आया ना ही फोन। सिद्धार्थ ने कई बार शाइना का नंबर डायल करना चाहा, मगर कॉल नहीं कर सका, क्योंकि उसका ताल्लुक एक ऐसी प्रोफाइल से था जहां इस तरह किसी को कॉल कर लेना शायद गुनाह माना जाता। अगर वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का होता तो शायद अब तक शाइना को प्रपोज कर चुका होता, मगर यहां उसकी झिझक उसे रोकती थी। 9 दिन बीतने के बाद सिद्धार्थ ने कॉल किया, मगर शाइना ने उठाया नहीं। शाम के 7 बजे उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर शाइना का नाम देखकर उसकी आंखों में 100 वाट के बल्ब रोशन हो गए। हेलो, अपनी खुशी छुपाकर वो ठहरे हुए लहजे में बोला।
हाय, सॉरी सिद्धार्थ, जब आपका कॉल आया तब मीटिंग चल रही थी, फिर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग, फिर वेबिनार पे प्रेजेंटेशन, फिर एचआर के साथ मीटिंग, मुझे तो लंच का भी समय नहीं मिला। अभी फ्री हुई तो सोचा सबसे पहले आपको कॉल करूं, फिर कुछ खाऊंगी,
शाइना एक झटके में बोलती चली गई। ये तो डिनर का वक्त है, प्लीज पहले आप कुछ खा लें, मैं इंतजार कर लूंगा तब तक।
ठीक है, तब मैं आपको रात के 9 बजे कॉल करती हूँ, असाइनमेंट पूरा करके।
नो इश्यूज। शाइना का फोन 9 की जगह 9:30 बजे आया।
सॉरी सिद्धार्थ साहब, मम्मी का कॉल आ गया था तो वक्त का पता ही नहीं चला और मैंने आधे घंटे बाद कॉल किया।
कोई बात नहीं, मैं तो फ्री ही था। खैर, कैसी हैं आपकी मम्मी? ज्यादा देर बात करने की गरज से सिद्धार्थ ने पूछा।
जी, वो भी ठीक हैं और पापा भी। बेटी बाहर होती है ना तो माँ बाप की फिक्र वैसे ही बढ़ जाती है।
सही कहा, मगर बेटी हो या बेटा, माँ की फिक्रें कभी कम नहीं होती। मेरी मम्मी का भी यही हाल है। मैं 40 साल का प्रोफेसर सिद्धार्थ हूँ, मगर उनकी नजरों में आज भी मैं छोटा सा सिड ही हूँ।
वाओ, सिड साउंड्स नाइस। आपकी मम्मी आपको सिड कहती हैं?
मम्मी क्या, मुझे मेरे सारे घर वाले सिड ही कहते हैं। ये जो प्रोफेसर सिद्धार्थ का लबादा है ना, ये तो मैंने ओढ़ रखा है। सच कहूं तो मैं सिड रहने में ही ज्यादा खुश रहता हूँ।
फिर दोनों में बातचीत चली तो कब रात के 1 बज गए पता ही ना चला। बातचीत पता नहीं कितनी और लंबी चलती,
अगर शाइना के मोबाइल की बैटरी 6% न बचती तो। फिर तो उसके बाद बात का सिलसिला ही चल निकला, मगर मिलने के लिए किसी ने पहल नहीं की। ये शायद पक्की उम्र के इश्क की खासियत होती है कि रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। दोनों तरफ से पहल का इंतजार होता है।
मे आई कम इन सर?
अपने कैबिन में बैठे कुछ पढ़ते हुए सिद्धार्थ के कानों में एक दिलकश आवाज उतरी तो उसने चौंक कर देखा, सामने शाइना थी।
मैं आज छुट्टी पर थी, किसी काम से इधर आना था, तो सोचा आप तो कभी बुलाएंगे नहीं, तो मैं आपको अपनी किताब देती हूँ, पढ़कर बताइएगा कैसी लगी।
मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा, अपने ऑटोग्राफ दीजिए पहले इस पर, सिद्धार्थ चहकते हुए बोला। सिद्धार्थ लिखते लिखते शाइना ने लिखा सिड के लिए, जिसमें अपनेपन की महक है, और नीचे अपने ऑटोग्राफ दिए। सिद्धार्थ ने उसे बैठाया, कॉफी पिलाई। अगर उसका वेबिनार ना होता तो कॉलेज से जाते हुए उसे साथ ले जाता, मगर फिर भी उसने संडे को शाइना से लंच पर अपने घर आने का वादा करवा ही लिया। रात में सिद्धार्थ ने शाइना की किताब खोली और काफी देर तक उसकी हैंडराइटिंग पर अपनी उंगली फेरता रहा। इतवार को वो सुबह से चहलकदमी कर रहा है। उसे इंतजार था शाइना का। जब वो आई तो ग्रे पटियाला सूट में बहुत दिलकश लग रही थी। वो सिद्धार्थ की मम्मी से गले मिली, सबने खुशगवार माहौल में लंच किया। बेटी यहाँ अलग रहती हो, कोई परेशानी हो या जरूरत हो तो बताना, ये मत समझना कि शहर में अकेली हो, सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा।
जी जरूर आंटी, वैसे शहर में आप हो तो मुझे क्या तकलीफ होगी,
शाइना बोली। बस बेटी, मैं तो यही कहूंगी, आती जाती रहना, ताकि इस घर में थोड़ी सी रौनक तो आए।
जरूर आंटी, मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे मिलना। वैसे आप सिद्धार्थ साहब के लिए दुल्हन क्यों नहीं ले आती, घर में खूब रौनक हो जाएगी,
सिद्धार्थ को कनखियों से देखते हुए शाइना ने कहा।
अरे ले तो तब आऊं बेटा, जब साहबजादे को कोई पसंद आए।
फिर शाम तक शाइना सिद्धार्थ के घर ही रुकी। वापसी पर सिद्धार्थ की मम्मी ने एक डायरी गिफ्ट में दी तो शाइना की आंखें भीग गईं। फोन कॉल्स ने दोनों को अच्छा दोस्त बना दिया था। एक दिन बातों ही बातों में सिद्धार्थ ने हाईवे के एक ढाबे का जिक्र किया, जहां की एक पंजाबी डिश मशहूर थी। शाइना ने वहां जाने की इच्छा जाहिर की और दोनों छुट्टी के दिन चल पड़े। उस दिन को उनकी पहली डेट कहा जा सकता था, जिसके लिए सिद्धार्थ ने एक दिन पहले सैलून जाकर अपने सिर में उगते कुछ चांदी के तारों को कलर करवाया, और आज वो फॉर्मल कपड़ों की जगह जीन्स टी शर्ट और सनग्लासेस में था। शाइना उसे देखते ही बोली,
अरे वाह, इसी तरह रहा करो ना, क्यों हमेशा फॉर्मल में बुजुर्ग बने रहते हो।
फिर दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया, जिसमें काफी वक्त लगने वाला था। इधर उधर की बातों के बाद सिद्धार्थ ने पूछ ही लिया,
एक बात पूछूं शाइना, अगर माइंड ना करो तो?
पूछो पूछो, मेरे पास माइंड होगा तब ना करूंगी माइंड।
तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की शाइना, काफी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी होगी।
एक लंबी सांस लेकर शाइना ने कहना शुरू किया,
लाइन तो लगी थी और उस लाइन को क्रॉस करके केवल आधी आगे बढ़ पाया था, जिसकी मोहब्बत मेरी रूह में सांस लेती थी, मगर उसे बहुत आगे जाना था और ये नशा उसे ले गया कनाडा, जहाँ से शुरू में तो दिन में 10 बार उसके फ़ोन आते थे, फिर बाद में 10 दिन में 1 बार फ़ोन आने लगा। मेरे चाचा भी वहीं सेटल्ड हैं, जब हम लोग यहाँ शादी की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि आदि ने तो एक बिजनेस टाइकून कैनेडियन औरत से शादी कर रखी है। बस इसके बाद शादी के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। खैर ये तो हुई मेरी बात, मगर सिद्धार्थ साहब आपने अब तक शादी क्यों नहीं की?
बस शायना यूं समझ लो जिम्मेदारियों ने इस तरफ सोचने का वक्त ही नहीं दिया। पहले करियर फिर जिम्मेदारियों ने उलझा दिया और अब लगता है कि वक्त गुजर गया।
इतने में उनका खाना आ गया, दोनों ने चुपचाप खाना खाया। रास्ते में भी दोनों में से किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, शायद दोनों पहले आपका इंतजार कर रहे थे। रात में सिद्धार्थ ने मैसेज किया, कभी जिंदगी की तरफ लौटना चाहो तो लौट आना, मैं वहीं मिलूंगा। जिसके जवाब में शायना ने ओके वाली स्माइली भेज दी। फिर लगभग 4 दिनों तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। सिद्धार्थ ने ठहरी हुई नदी में कंकड़ तो मार दिया था, मगर उस कंकड़ से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने भी चुप्पी ओढ़ ली। उस दिन शायना को ऑफिस देरी से जाना था, इसलिए उसने सुबह बजता अलार्म बंद किया और वापस सो गई। मगर मोबाइल की लगातार बजती घंटी ने उसकी नींद उड़ा दी। देखा तो सिद्धार्थ का फोन था। हेलो के जवाब में उसे सिद्धार्थ की सिसकियां सुनाई दी।
सिड क्या हुआ, सब ठीक तो है?
शायना मम्मी।
क्या हुआ मम्मी को?
शायना उनको हार्ट अटैक हुआ है। मेरी दोनों बहनें इंडिया के बाहर ब्याही हैं। मम्मी को जरूरत है तुम्हारी।
ओके मैं अभी आती हूं।
हॉस्पिटल का नाम सुनते ही शायना ने कहा। हॉस्पिटल में सीसीओ के बाहर बैठा सिद्धार्थ बहुत उजड़ा उजड़ा लग रहा था, जो शायना को देखते ही फपक पड़ा। शायना ने न जाने कौन से एहसास में भरकर उसे गले लगा लिया और बच्चों की तरह बालों में उंगली फेरते हुए कहा,
हौसला रखो सिड, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की केयर के लिए मैं रहूंगी उनके साथ, तुम परेशान मत हो।
1 हफ्ते मम्मी हॉस्पिटल रहीं। शायना ने उनकी खूब देखभाल की, शायद इसी वजह से मम्मी को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आ गईं, जहां शायना 2 दिन तक उनके साथ रुकी। फिर मेड और नर्स को समझाते हुए बोली, कल से मैं सारा वक्त यहां नहीं रहूंगी, मुझे अपने फ्लैट पर जाना है, इसलिए जो भी बताया है उसमें कोई ढिलाई ना हो। वो जाने को निकली ही थी कि मम्मी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली,
क्या इसीलिए जान बचाई थी कि अकेली मरने के लिए छोड़कर चली जाओ?
क्या हुआ मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
कमरे में आते हुए सिद्धार्थ ने पूछा।
मैं सब समझती हूं, उम्र ली है मैंने, तुम दोनों के दिलों को टटोला है, दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। मैं चाहती हूं जो एहसास तुम्हारे दिलों में है उसे एक मंजिल पर पहुंचाओ, उसे एक रिश्ते में बदलो।
क्या मतलब मम्मी?
दोनों ने एक साथ पूछा।
मतलब तुम दोनों समझते हो, मगर मेरे ही मुंह से सुनना है तो सुनो। मेरे घर में शायना के अलावा कोई और लड़की बहू बन के पैर नहीं रखेगी। मैं खुद शायना के मम्मी पापा से मिलूंगी और मांग लूंगी इसे अपने आंगन में खुशियों के रंग बिखेरने के लिए।
मम्मी ने फैसला सुनाते हुए कहा तो शायना शर्मा गई।
मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, आओ तुम्हें तुम्हारे फ्लैट तक ड्रॉप कर दूं।
गाड़ी में बैठते हुए शायना ने सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहा,
मम्मी तो घर लाना चाह रही हैं और बेटे को ड्रॉप करने की जल्दी है।
जल्दी इसलिए है कि इस चांद को हमेशा के लिए अपने आंगन में बसा लूं।
मिस्टर सिड, जब तुमको मोहब्बत थी तो तुमने इजहार क्यों नहीं किया?
डरता था कि कहीं चांद को आंगन में बसाने की ख्वाहिश में उसकी उतनी रोशनी से मरहूम ना हो जाऊं जितनी अभी है।
चांद कौन है? शायना ने पूछा।
सिद्धार्थ ने धीरे से शायना के चेहरे पर उंगली रखते हुए कहा, ये रहा मेरा चांद।
आप सुन रहे थे फानी जोधपुरी जी द्वारा लिखी कहानी मेरा चांद। वाचन था निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।